السلام علیکم غامدی صاحب.
جی وعلیکم السلام.
غامدی صاحب بڑا ایک سینسٹیو ایشو چل رہا ہے یہی اجتماعات کے اوپر. آج جمعہ تھا, اگرچہ ساری گورنمنٹس نے مختلف نوعیت کی پابندیاں لگائی ہوئی تھیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ تمام جگہ پہ اور خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں, چھوٹے شہروں میں اور بڑے شہروں کی بھی جو محلے کی مسجدیں ہیں ان میں کھل کے اجتماع ہوئے. اور آپ کو پتہ کم از کم 2 لاکھ کے قریب مسجد کہا جاتا ہے پاکستان میں ہے, شاید اس سے بھی بہت زیادہ ہوں گی, لیکن آج لاکھوں لوگوں نے ایک ٹوٹل ایک ٹرانسمیشن کا ایک خطرہ جو تھا بھرپور طریقے سے آیا. اس پہ بڑا ہارڈ لائن لی ہوئی ہے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان نے, اور انہوں نے کہا کہ بالکل آپ اگر آپ سمپٹمز ہوں تو نہ آئیں, لیکن اس بیماری میں سمپٹمز کے علاوہ بھی لوگ کیریئرز ہیں, سب کچھ ہیں. ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے, مفتی صاحب نے ان سے سوال بھی کیا تھا, پھر وہ جواب بیچ میں رہ گیا, اس پہ وہ آئے نہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 102 کی بات کی, جس میں ذکر ہے کہ اگر لشکر بھی سامنے ہے تو آدھی فوج پہلے نماز قائم کرے, پھر آدھی فوج باقی لشکر بعد میں قائم کرے. تو اس کی اگزامپل دے کے کہا یہ جا رہا ہے کہ جماعت سے کوئی ایگزیمشن نہیں ہے, اور جو بارش کی اگزامپل دی جاتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو وہ تو اور وقت کا مدینہ تھا, کچی مسجدیں تھیں, کچی چھتیں تھیں, تو آج کے دور میں وہ چیزیں نہیں ہیں. ذرا کائنڈلی ان دو باتوں پہ پہلے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اور سوال میرا یہ ہے کہ کیا کوئی بھی مذہبی ریچول, کوئی بھی فریضہ کسی بھی مذہب کا, کیا وہ اس کی زندگیوں سے زیادہ ضروری ہے؟
میں تو اپنی رائے بڑی وضاحت کے ساتھ دے چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے عبادات کے معاملے میں یہ اصول بتایا ہے کہ اگر مشقت تحمل سے بڑھ جائے تو اس پر بھی دوسری صورت میں چلے جاتے ہیں. آپ پورے دین کی تعلیمات کو دیکھیے, اس میں اگر پانی میسر نہیں ہے, آپ سفر میں ہیں, آپ مریض ہیں, آپ کے پاس پانی کم پڑ رہا ہے, تو تیمم کی اجازت دے دی گئی. آپ نماز کو دیکھیے, اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی خطرے کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو نمازوں کو جمع کر لیں, نمازوں کو قصر کر لیں. یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر کسی کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے یا سواری ہی پر نماز پڑھنا ممکن رہ گیا ہے تو فرجالن و رکبانہ, یہ قرآن مجید نے بتایا ہے. یعنی زندگی کو نماز کے, روزے کے, عبادات کے مقابل میں کھڑا نہیں کیا گیا, بلکہ انسان اگر کسی مشقت میں پڑ جائے تو اس میں بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ دوسری صورت کو اختیار کر لیتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ روزے کے معاملے میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ آپ سفر میں روزہ رکھیں, آپ چھوڑ دیں, باقی دنوں میں پورا کر لیں. تمام عبادات میں یہی اصول ہے. اس اصول کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ عبادات کے معاملے میں انسانوں کو کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے, وہ آسانی چاہتے ہیں. اس اصول کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شدید بارش ہوئی تو اس میں کوئی جان کو خطرہ نہیں لاحق ہو گیا تھا, لیکن اعلان کرا دیا گیا کہ لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیں. صحابہ کرام نے اسی کی پیروی کی. اس وجہ سے یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ انسانی جان کو خطرہ لاحق ہوگا تو پھر آپ نماز کے بارے میں یا روزے کے بارے میں رخصت دیں گے. یہ رخصت دینی چاہیے, یہ دین کا تقاضا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پابند کیا ہے کہ انسانوں کو کسی ایسی مشقت میں نہ ڈالا جائے جس کا تحمل ان کے لیے ممکن نہ ہو. جان تو بہت بڑی چیز ہے, اس وجہ سے جب جان کو خطرہ لاحق ہو جائے, یا میری جان کو یا مجھ سے دوسروں کی جان کو, تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میں اگر اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہوں تو یہ خودکشی کا اقدام ہے. میں دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالتا ہوں, جانتے بوجھتے خطرے میں ڈالتا ہوں, کہ یہ اقدام قتل ہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے, اس کے احکام کی روح کیا ہے.
یہ بتائیے, انہوں نے ایک بات کی مفتی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے جب گورنمنٹ کہہ دیتی ہے لوگوں کو کہ آپ احتیاط کریں, چلے جائیں, تھوڑے لوگ چلے جائیں, ہم تو کسی کو مسجد میں آنے سے کیسے روکیں گے, اس بات میں بھی وزن ہے. تو کیا گورنمنٹ کو بڑا کیٹیگوریکلی اس پہ साफ पॉलिसी नहीं दे देनी चाहिए कि ठीक है जो मस्जिद का अमला है, चार पांच लोग हैं, सिर्फ वो नमाज पढ़ेंगे, किसी और को इजाज़त नहीं है। या फेडरल मिनिस्टर कहेंगे कि वो जा सकता है जो बाकायदगी से नमाज पढ़ता हो, वो जा सकता है जो सेहतमंद हो। ये तो ऐसी बीमारी है जिसमें कैरियर्स के कई ऐसे कैरियर्स भी निकले हैं जिनके ऊपर सिम्पटम्स नहीं हैं। तो क्या गवर्नमेंट को वाजे इस पर क्लियर नहीं कर देना चाहिए?
आप एक निगाह उठा के देखें, जिन हुकूमतों का इक्तदार कायम है हकीकी मानी में, उन्होंने क्या किया है? आप हरमैन को देख लें, आप मस्जिद नबी को देख लें, उनसे बड़ी जगह तो कोई नहीं हो सकती थी। पूरे आलम अरब को आप देख लें, आप तुर्की को देख लें, हर जगह हुकूमत ने गैर मामूली इकदाम किए हैं। हमारी हुकूमतें इस तरह के मामलात में न सिर्फ ये कि फैसला करने में ताखीर करती हैं, उनके अंदर फैसले को नाफिज करने की सलाहियत नहीं होती, बल्कि इससे बड़ा आलमिया ये है कि मजहबी तबकात एक मुकाबिल की कुव्वत बन चुके हैं। मस्जिद उनकी रियासत है, वो उसमें मुदाखलत को भी गवारा करने के लिए तैयार नहीं होते। ये हमारे मुल्क का मसला है। मेरे नज़दीक इस मामले में पहले दिन एक वाज़े कतई फैसला करना चाहिए था। दीन में इसकी पूरी गुंजाइश थी, बल्कि दीन का हुक्म था कि आप लोगों की जान माल आबरू को बचाने के लिए इकदाम करें। हुकूमतें इसीलिए कायम की जाती हैं। पहले दिन अगर एक वाज़े पॉलिसी इख्तियार की जाती, वाज़े इकदाम किया जाता, तो ये सूरत हाल ना होती जिसकी तस्वीर आप खींच रहे हैं। यानी अब हुआ क्या, आपने पाबंदी भी लगाई, आपने ये सब काम भी किए और लाखों की तादाद में लोग फिर भी मस्जिदों में चले गए, तो ये क्या चीज़ है? इसका मतलब ये है कि ना मजहबी लोग अपनी रियासत में मुदाखलत को कबूल करने के लिए तैयार हैं, ना हुकूमतें इस पोजीशन में हैं कि वो लोगों की जान की हिफाजत के लिए कोई हकीकी इकदाम कर सकें। ये बड़ी अलमनाक सूरत हाल।
गामी साहब, एक तासुर दिया जा रहा है कि ये गुनाहों की सजा है ये वबा, तो क्या इससे वजह यह नहीं फिर होता कि जो लोग अपने आप को नेक समझते हैं वो समझते हैं कि हमें हो ही नहीं सकती है, और वो और इस चीज को फैला देंगे?
ये बड़ी गलत फहमी है। ये आपके इलम में है कि मलेशिया में पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन फिर तबलीगी जमात के इज्तिमा में दूसरा हमला हुआ, फिर एक और इज्तिमा उनके यहाँ सरवाक में हुआ, जिससे तीसरी मरतबा ये वबा ज्यादा शू के साथ लोगों तक पहुंची। तो ये ऐसा नहीं है, ये मामला किसी नेक या बद से मुतल्लक ही नहीं, ये एक आलमी नौइयत की मुसीबत है, पूरी इंसानियत पर आई है। इस तरह की मुसीबतें कुरान मजीद की रूह से अल्लाह ताला की तरफ से तंबी होती हैं, वार्निंग होती हैं, और इसमें यह नहीं देखा जाता कि ये नेकोकारों पर आ रही है या बदकारों पर आ रही है। इससे मकसूद ये होता है कि लोग मुतनब्बे हों, गफलत से बेदार हों, खुदा की तरफ देखें और ये भी देखें कि खुद उनकी अपनी पॉलिसियों में क्या खामियां हैं, उन्होंने क्या फिलवा
जो इसकी मुखालफत दी है। जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये शरीयत के मामले हैं, हम हुकूमत की बातें सुनेंगे, शरई मामलों में हम मामला नहीं, उनकी बात नहीं सुनेंगे। क्या ये मस्जिद के बारे में ये हुक्म सादर करना, क्या ये शरई मामला है या एक इंतजामी मामला है?
कि शरीयत की रोशनी में इंतजामी फैसले होंगे। उलमा का काम है कि वो कोई राय देना चाहते हैं राय दें, लेकिन मस्जिदों से मुतल्लक ये चूंकि इज्तिमाई मसला है, आखिरी फैसला करने का हक खुद शरीयत ने हुकूमत ही को दिया है। जुमे के मामले में तो शरीयत का कानून ये है कि कोई आलिम जुमा पढ़ाने की जसारत ही नहीं कर सकता, ये हुक्मरान का हक है, उसका काम है कि वो जुमा पढ़ाए। तो इस वजह से इस मामले में जिस नौइयत का इसरार किया जा रहा है उसकी दीन में कोई गुंजाइश नहीं है। मस्जिदों का नज़म भी हुकूमत को कायम करना चाहिए और जुमे के खुतबे का एहतमाम भी हुकूमत को करना चाहिए। ये अल्लाह ताला के वो अहकाम हैं जिनके मुताबिक खुलफाए राशिदीन सब मामलात करते रहे हैं। अब हमारी बदकिस्मती है कि हम चूँकि अपने हुक्मरानों को यहाँ कायल नहीं कर सके, और ये सारा मामला उलमा के सुपुर्द हो चुका है, उसके नतीजे में एक रियासत वजूद में आ चुकी है। ये पैरेलल रियासत है, ये रियासत के अंदर रियासत है। इसको अब आप चैलेंज करेंगे तो नतायज यही निकलेंगे जो निकल रहे हैं।
गामी साहब, ये बताइए, क्या बाजमात नमाज मिस करना या उसको ना पढ़ना क्या गुनाह है?
अगर आपके घर के करीब मस्जिद है तो आपको नमाज बाजमात ही पढ़नी चाहिए, मस्जिद में जाके पढ़नी चाहिए। लेकिन नमाज हो गई वो घर में अकेले भी हो जाती है। नमाज आप किसी दूसरी जगह चार आदमी मिलके जमात करा लें तब भी हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गैर मामूली सवाब और अजर की बात है कि आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें। मस्जिदों को वीरान कर देना आम हालात में ये यकीनन गुनाह की बात है। लेकिन इस वक्त क्या मामला आम हालात का है? इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि इंसानी जान खतरे में आ गई है। इसमें हर चीज़ को बुलाकर आपको पहले जानों की हिफाजत के लिए इकदाम करने होते हैं। मैंने ये सवाल किया था अभी चंद रोज़ पहले पब्लिक मीडिया पर कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, फ़र्ज नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने एक बच्चा आग में हाथ डालने के लिए जा रहा हो तो दीन का हुक्म क्या है? मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि दीन का हुक्म यह है कि मैं नमाज को छोड़ दूँ और बच्चे को बचाने की कोशिश करूँ। इस वक्त आप देखें माहिरीन तिब क्या कह रहे हैं, दुनिया किस उफ्ताद का शिकार हो गई है। इसमें हमें ये रवैये नहीं इख्तियार करने चाहिए। हमारी रियासत को इकदाम करना चाहिए और उसके इकदाम के सामने मुझे आपको हर एक को सरे तस्लीम खम करना चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस तरह के मौक़ों के ऊपर अपने हुक्मरान की इताअत करो, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं।
राबी साहब एक ये बताइए कि हमें तो जब आम आदमी का कोई जब कोट करता है, कोई कुरान शरीफ की आयत का जिक्र करता है तो हमारे तो वैसे ही हाथ पांव फूल जाते हैं, को हमारा इतना इल्म नहीं होता। ये जो रिलायंस दी जा रही है सूरह निसा की आयत 102 पे, जो लश्कर वाला मैंने आपसे जिक्र किया कि वो कहते हैं जी हालत जंग में भी इजाज़त नहीं है कि आधा लश्कर करे और आधा, तो आप क्या बात कर रहे हैं, तो ये तो हालात वो नहीं है। क्या फिर ये सूरह निसा की जो आयत है इसका मफहूम उस तरह नहीं लिया जा रहा जिस तरह लेना चाहिए?
ये तीनों मराहिल कुरान में बयान हुए हैं, यानी किसी मौके के ऊपर अगर ख़तरा हो गया है तो आप नमाज को कसर कर सकते हैं, आप नमाज को जमा कर सकते हैं। फिर बताया है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लम वहाँ मौजूद हो और जमात कराने का मौका हो तो कैसे जमात कराई जाए। फिर सूरह बकरा में ये बताया है कि अगर ना जमात कराने का मामला हो सकता है, ना लोग खड़े हो सकते हैं, ना सवारियों से उतर सकते हैं, तो वहाँ ये कहा है कि अब ना जमात कराई जाएगी, ना कोई सफ बांधी जाएगी, अब फरिजालन और रुकबाना, अब लोग पैदल चलते हुए पढ़ लें, आप सवारी पर बैठे हुए पढ़ लें। ये सारे मकामात कुरान मजीद में है, यानी हर मौके की एक बात है। आप जानते हैं कि उस जमाने की जंगें इस तरह नहीं होती थी कि ऊपर से आग बरस रही हो, उसमें इसका मौका होता था कि आप अलग खड़े होके जमात करा लें। अगर मौका है तो ये कराया जाएगा, अगर मौका नहीं है तो फिर वह रिजालन और रुकबाना होगा। ये सब चीज़ें कुरान मजीद में बयान हुई हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या ऐसी है कि हम लोगों को ये कहें कि वो आएँ और मस्जिदों में आके जमात कराएं? इसका मतलब ये है कि हम पूरी इंसानियत को ख़तरे में डाल रहे हैं। तो इस तरह का इकदाम करने से पहले ज़रा पूरे कुरान मजीद को देख लें, उसमें मुख्तलिफ मराहिल से मुतल्लक तमाम हिदायत दी गई हैं और आखिरी हिदायत सूरह बकरा में है और उसके अल्फाज हैं कि अगर ख़तरे की सूरत पैदा हो जाए तो फिर फरिजालन और रुकबाना, पैदल चलते हुए नमाज पढ़ लो, तुम सवारी पर बैठे हुए नमाज पढ़ लो। मुझे बताएं पैदल चलते हुए सवारी पर बैठे हुए जमात कैसे होगी?
अच्छा गांधी साहब ये बताइए, अब बहुत सी अमवात भी हुई हैं मुसलमान ममालिक में भी हुई हैं, यहाँ पर भी इस पर जिक्र हो गया कि इन लोगों का शोहदा का दर्जा है। पहली बात तो यह है कि ये मैं जानना चाहूँगा कि क्या शोहदा का दर्जा है, और अगर शोहदा का दर्जा है क्यों फिर कॉम्प्लिकेशन आ रही है कि किस तरह उनकी तदफीन होगी, उनको स्पेशल बॉडी बैग्स होंगे, घर वाले हाथ नहीं लगा सकते क्या? तो अव्वल तो क्या शोहदा को गुसल देना ज़रूरी है, और आखिरी रसूमात किस तरह होनी चाहिए कि जो इस शरिया के मुताबिक भी हों और मेडिकली भी हमारे लिए नुकसानदेह ना हो?
ये शहीद की इस्तलाह दीनी लिहाज से उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो अल्लाह की राह में निकले हों, अल्लाह का कोई काम करने के लिए निकले हों और उसमें मारे जाएं या उनको कोई तबई सूरत हाल पेश आए और मौत आ जाए। तो इस वजह से दीनी इस्तलाहात को तो वहीं रहने देना चाहिए। अब उसके बाद जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो देखिए वहाँ भी वही है कि आम हालात में हमें पूरे अहतमाम के साथ अपने भाई की तजहीज़ करनी चाहिए, तकफीन करनी चाहिए, उसको दफन करना चाहिए, उसका जनाजा पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी वक्त गैर मामूली हालात पेश आ जाए तो इन तमाम चीज़ों में तब्दीली हो सकती है। आपके इलम में है कि जब बहरी जहाज़ों में वफात हो जाती थी तो उसमें ना तदफीन होती थी, ना इस तरह कब्र खोदना मुमकिन होता था। आम तौर पर यह किया जाता था कि जहाज ही से समंदर में मैयत को बहा दिया जाता था। आपके इलम में होगा कि काजी सलमान मंसूरपुरी, जिनकी बड़ी मशहूर किताब है रहमतुल आलमीन सीरत के मौजू पर, उनकी वफात ऐसे ही हुई थी और उन्हें बहरा अरब में बहा दिया गया था। तो ये आम रिवायत रही जब तक बहरी जहाज़ों में लोग सफ़र करते थे। तो दीन का तकाजा ये है कि आम हालात में हम पूरी कोशिश करें कि जो अल्लाह का बताया हुआ तरीका है उसके मुताबिक तजहीज हो, तकफीन हो, तदफीन हो। लेकिन अगर किसी वक्त ये नामुमकिन हो जाएगा तो दूसरी सूरतें इख्तियार की जाएंगी। जंगे उहद के बाद जब बहुत से सहाबा शहीद हो गए तो आपके इलम में है कि उनको उसी तरह दफन कर दिया गया।
यानी कि लोगों को इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि किसी तरह कमतर तरीके से तदफीन हुई है तो शायद उनको किसी बात की सजा मिली है, ये लोगों को फिक्र नहीं होनी चाहिए खानदान वालों को।
इसका कोई मामला नहीं है। आप अंदाजा करें ना कि जंगे उहद के शहदा, उनको इसी तरह दफन कर दिया गया। बहुत से मौकों के ऊपर आप इलम में है, जलजले आ जाते हैं, एक ही बड़ी सी कब्र खोद के लोगों को उसमें डाल दिया जाता है। तो दीन में इन चीजों को आम हालात में लाजमन मलहूज रखना चाहिए, खसूसी हालात में भी पूरी कोशिश करनी
चाहिए। मेरा वक्त खत्म हो गया है, आपसे तो बात करते हुए एहसास ही नहीं होता वक्त गुजरने का। लेकिन आखिरी सवाल, क्या ये वक्त आ गया कि अब हुकूमत ये रियासत, विद इन रियासत की जो बात है इसकी फिक्र किए बगैर जो ओवरऑल कौम की बेहतरी है उसके तहत ये फैसला कर दे कि ये इज्तमात वगैरह पाबंदी होगी जब तक ये कोरोना कंट्रोल में नहीं आती?
ये वक्त पहले दिन आ गया था, ये अब भी है। इसमें जितनी देर की जाएगी उसके सख्त खतरनाक नतायज निकलेंगे। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को अपनी रिट कायम करनी चाहिए और पूरी कुव्वत के साथ वो अहकाम नाफिज करने चाहिए, सिर्फ मजहबी मामलात में नहीं, हर जगह,
डॉक्टर साहब
में भी, गलियों में भी।
बहुत शुक्रिया सर बात करने का, बहुत शुक्रिया।